कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज सुनने वाले सभी श्रोताओं को तेज प्रकाश की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरी दोस्त मोनिशा।
दोस्तों, आप सभी को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार।
दोस्तों, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज सामाजिक मुद्दों पर आप लोगों की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर है।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमने महात्मा गांधी नरेगा पर आधारित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है, इसी क्रम में आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है महात्मा गांधी नरेगा में महिलाओं की भूमिका पर।
दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक भूमिहीन परिवार था। उनके परिवार में एक महिला, विकलांग पति और दो बच्चे रहते थे, साथ ही घर में आय का कोई और साधन नहीं था।
दोस्तों, पति की असमर्थता को देखते हुए महिला एक जमींदार के यहाँ काम करने लगी, जो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन देता था और जिससे उसके परिवार का निर्वाह अच्छी तरह नहीं हो पाता था।
दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से उसे उसी के गांव में रोजगार मिल गया।
तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम महात्मा गांधी नरेगा में काम करने वाली ऐसी ही कुछ महिला श्रमिकों के बारे में बात करेंगे।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी महात्मा गांधी नरेगा महिलाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है।
इससे महिलाओं को कार्य के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके गांव में ही रोजगार का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है, जिसे महात्मा गांधी नरेगा कहा जाता है।
बिल्कुल मोनिशा, महिलाएं अब अपने घर के कामकाज के अलावा रोजगार गारंटी के कार्यों में भी अपना काम कर सकती हैं, जिससे उन्हें 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है।
इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि औरतें इससे अपने घर की एक कमाऊ सदस्य भी बन जाएंगी और घर के निर्णय लेने में उनका भी सहयोग रहेगा।
दोस्तों, इस विषय पर हमने बात की नरेगा कार्य में सम्मिलित कुछ पुरुषों से और जाना कि नरेगा में महिलाओं की भागीदारी पर उनका क्या कहना है।
मेरा नाम किशन कुमार मेघवाल है। मैं यहाँ पर एक मेट का कार्य कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि महिलाओं को अधिक से अधिक काम मिले। अगर गांव के अंदर रोजगार मिलेगा तो वो शहर की तरफ प्लान नहीं करेंगे, गांव का पैसा गांव में रहेगा, इनकी सुधार स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। और सर, मेरा संभावना ये है कि महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे गांव के अंदर कार्यक्रम चलाए जाएं, सिलाई प्रशिक्षण है, जैसे कि कपड़े सिलने का कार्य है। अगर इनको यह भी पंचायत के रूप से या जिला लेवल से अगर गांव के अंदर रोजगार दिला दिया जाए, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो ये कार्य करेगी तो गांव में और महिलाओं को पैसा कमाने की इच्छा होगी।
मेरा नाम बालूराम रेगर है, मैं कुरावड़ का निवासी हूँ। नरेगा के तहत महिलाओं को सरकार ने जो 33% का आरक्षण दिया है वो कुछ हद तक सही है। ज्यादातर कार्यस्थल पर तो महिलाएं ही काम करती हैं, वहाँ पुरुष न के बराबर हैं। इससे महिलाएं एक तो घर की कमो सदस्य बन रही हैं, घर के महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, क्योंकि परिवार का जो सदस्य कमाने लग जाता है उसके निर्णय पर भी गौर किया जाता है। घर के अन्य कामकाज के अलावा नरेगा गांव में महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं दे रहा है तो ये सोने पर सुहागा है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज और आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी नरेगा में महिला श्रमिकों के बारे में।
मोनिशा, नरेगा में महिलाओं की 33% की न्यूनतम भागीदारी निर्धारित की गई है, जबकि सर्वे के मुताबिक कुछ क्षेत्रों में यह काफी नीचे थी और कहीं और भी ज्यादा।
हाँ तेज, उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ये आंकड़े क्रमशः 5% और 13% थे, वहीं राजस्थान में 71% और मध्य प्रदेश में 44% महिलाएं नरेगा में अपनी भागीदारी निभाती हैं।
दोस्तों, इसके अलावा झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में महिलाओं की नरेगा कार्यस्थल पर उपस्थिति मात्र 18% एवं 25% ही है।
आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को कार्यस्थल पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता हो?
आप सही कह रही हैं। अक्सर ग्राम पंचायतें यह शिकायत करती हैं कि महिलाएं नरेगा के अंतर्गत काम नहीं करना चाहती, पर हकीकत कुछ और ही है।
श्रोताओं, इस बारे में जब हमने महिलाओं से बात की तो पता चला कि वे कार्य करने के प्रति कितनी उत्सुक हैं, पर कुछ बाधाएं उनकी राह में रुकावट बन जाती हैं।
मोनिशा, कुछ जगहों पर सामाजिक मानदंड होते हैं कि महिलाएं घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं।
बिल्कुल तेज, दूसरी बड़ी बाधा है कि कार्यस्थल पर बच्चों की देखरेख के लिए उचित व्यवस्था ना होना।
वैसे तो रोजगार गारंटी कानून ये कहता है कि कार्यस्थल पर 5 बच्चे 6 साल से कम उम्र के हों तो उनकी देखरेख के लिए एक महिला श्रमिक को चुना जाना चाहिए।
परंतु नरेगा कार्यस्थल पर जाने वाले जांचकर्ताओं के अनुसार ये सुविधा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
दोस्तों, इसके अलावा ठेकेदारों के पक्षपात भरे रवैये से भी महिलाओं को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कई ठेकेदार तो अपने लोगों को ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार दिलवाते हैं।
मध्य प्रदेश के कुछ महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थलों पर ठेकेदार महिलाओं की अपेक्षा नौजवान पुरुषों को कार्य पर रखते हैं।
दोस्तों, जिससे वहाँ की महिलाओं का कहना है कि उन्हें लिंग भेद की चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक ताकत को एक ढांचागत रूप देने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी महात्मा गांधी नरेगा में कुछ स्पष्ट व्यवस्थाएं बनाने और हकों को कानूनी रूप से परिभाषित करने की कोशिश हुई है।
पश्चिम बंगाल के दरिकापुर गांव की जानकी दिन भर मछली और केकड़े पकड़कर गांव के बाजार में बेचकर 25 से 30 रुपए कमाती है और इसी से उसके परिवार के 5 सदस्यों की जिंदगी चलती है।
वह रोजगार गारंटी कानून के बारे में जानती है और 100 रुपए की न्यूनतम मजदूरी के बारे में भी। फिर भी वह नरेगा में काम नहीं करती क्योंकि उसे हर रोज मेहनत करके कमाकर पैसा घर में लाना होता है, तभी बच्चों को खाना मिलता है। वह 30 दिन तक मजदूरी के लिए इंतजार नहीं कर सकती हैं।
दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा कई मायनों में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित सामुदायिक व्यवसायों को विकसित करने का अवसर देता है।
जैसे पश्चिम बंगाल के 60% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के कच्चे झोपड़ों के सामने पानी का एक छोटा सा तालाब जरूर होता है जिसमें वे मछली पालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।
आप ठीक कह रहे हैं तेज। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत इस आजीविका के साधन को विकसित करने के पूरे अवसर राज्य सरकार को मिलते हैं, किंतु पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी नरेगा के सालाना विकास कार्ययोजना बनाने के काम को राजनीतिक तत्परता के साथ लागू नहीं किया गया।
दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा में बेहद स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि इस योजना में रोजगार के 33% अवसर महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगे, किंतु दक्षिण 24 परगना में पूरा कानून और पूरी योजना सत्ता नायकों के खूंटी पर टगी हुई है। वहां अब तक लगभग 17.3 लाख मानव दिवस का रोजगार दिया गया है, जिसमें से केवल 1.5 लाख दिन का रोजगार महिलाओं को मिल पाया है।
इसी तरह 24 परगना उत्तर में तो 6.44% रोजगार महिलाओं के खाते में गया है। मसला केवल 24 परगना जिलों तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर महात्मा गांधी नरेगा में महिला अधिकारों की अनदेखी की गई है।
दोस्तों, इसके अलावा राज्य में 393.35 लाख मानव दिवस रोजगार में से केवल 79.52 दिन का रोजगार महिलाओं को दिया गया।
दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा महिलाओं के लिए कितना कारगर सिद्ध हुआ है, इसकी कहानी खुद बयां कर रही हैं गीता और नंदू रेगर।
मेरा नाम गीता पटेल है। मैं मेट के स्तर पर काम कर रही हूँ। मेरी बचपन में शादी होने के कारण ससुराल वालों से बिगड़ा हो गया है। अब मैं मेरे माँ बाप के पास भी रहती हूँ। मेरे फादर नहीं है, मम्मी भी मजदूरी करती है, मैं भी उनके साथ में मेट के स्थान पर काम कर रही हूँ। उससे मेरे घर खर्चा अच्छा चल रहा है। घर के कार्य के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी कर रही हूँ और मुझे खुशी है कि नरेगा के तहत हम जो काम कर रहे हैं उसे गांव का आर्थिक विकास हो रहा है।
मेरा नाम नंदू रेगर है। मैंने बीएड की है। मेरी शादी को 15 साल हो गए। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नरेगा के तहत अब मुझे मेट का प्रशिक्षण मिला है। इसमें मेरी पढ़ाई का फायदा मिला और गांव में ही मुझे रोजगार नरेगा के माध्यम से मिला। अब इसमें फायदा ये हुआ कि मुझे काम के लिए घर से बाहर शहर नहीं जाना पड़ता है। मम्मी पापा भी लड़कियों को इतनी दूर काम पर नहीं भेज सकते हैं, लेकिन नरेगा में मेट का काम संभालते ही मैं अब आर्थिक रूप से परिवार की मदद करने में समर्थ हूँ।
तो दोस्तों, अभी आपने सुनी गीता और नंदूरेगर की कहानी। पर इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए हमने बात की नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की जनरल सेक्रेटरी एनी राजा से।
तो आइए सुनते हैं उनके विचार।
कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में आपका स्वागत है एनी राजा जी।
नमस्कार।
आपसे पहला सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने और इसका लाभ उन्हें पहुंचाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ये कहती है कि इस कानून के तहत करने वाला कोई भी काम में एक तिहाई अवसर महिला को मिलना चाहिए। कानून की प्रावधान है, कानून के अंदर यह है, इससे महिला की भागीदारी होना सुनिश्चित होती है। दूसरी चीज ये होती है कि कार्यस्थल पे जो बच्चों को देखभाल करने के लिए क्रच फैसिलिटी होना चाहिए, ताकि या हमारी गांव में आंगनबाड़ी होती है मगर वो आंगनबाड़ी 10 बजे से चलती है, नरेगा की काम शुरू होती है 7 बजे से, कभी कभी 6 बजे से भी शुरू होती है। तो ये महिला जो जिनके पास छोटा बच्चा है उनको कहाँ ले जाए, कौन देखेंगे? तो इसलिए उन महिला को भी, उन माओं को भी इस काम में शामिल होने का सुविधा सुनिश्चित करने के लिए इस कानून में ये बताया है कार्यस्थल पे बच्चों को देखभाल करने के लिए सुविधा होना चाहिए।
इस समय इतनी सारी सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन क्या इनका लाभ उन तक पहुंच पा रहा है? इसमें काम करने वाली महिलाओं की क्या स्थिति है?
हमने देखा है यदि वो राजस्थान में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, बहुत सारे राज्यों में ऐसा है 50% नहीं 70% से भी ज्यादा महिला इसमें भाग ले रहे हैं, इस कानून के तहत जो नरेगा के तहत काम कर रहे हैं। और दूसरी विषय मैंने बोला जो कार्यस्थल पे सुविधा होना चाहिए बच्चों को देखने का, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ये मैं आपको बताऊँ, हमारी पूरी देश में जो घूमने से भी हमारी अनुभव है इसका लागू ठीक से नहीं हो रही है, इस वजह से महिला को बहुत मुश्किल उठाना पड़ती है। और यूपी में एक जगह पे ये भी हमने एक कार्यस्थल पे हम गए थे, तब उधर से महिला ने बोले एक बच्चे का मृत्यु भी उधर हो गया क्योंकि कोई देखने के लिए नहीं था, वो गड्ढे में गिरकर बच्चे का मौत भी हो गया। तो ये दिक्कत आ जाती है महिलाओं के सामने।
जैसे आपने नाम लिया उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जिन राज्यों में ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे ये क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है?
देखो पूरी देश में देखेगा तो हम अकेले अकेले राज्य मत देखो, पूरी देश की एक क्या है लार्जर पिक्चर हम देखेगा तो हमें ये देखने के लिए मिल रही है कि हमारे देश में एवरेज जो 45 दिन का काम ही हम दे पाए, जो 100 दिन कानून ये कह रहे कि हर एक परिवार को, प्रत्येक परिवार को 100 दिन का काम मिलने का हक है, कानूनी हक है, मगर अभी तक हमने वो दे पाई 45 दिन का दे पाई जो ऑल इंडिया एवरेज देखेगा तो। तो इसमें भी फिर महिला को, महिला ज्यादा भागीदारी कर रही है तो भी उनको कभी कभी 25 दिन का काम मिल रहे साल में, या कभी कभी 30 दिन का मिल रहे, और जो किया हुआ काम का जो वेतन है भुगतान वो होती है 3 महीना 4 महीने के बाद, ये सब मुश्किल है। और हर राज्यों में हम देखेगा तो कोई भी राज्य में अभी तक पूरी तरीके से इसका जो लागू करना किया नहीं है, और बहुत सारे, क्योंकि एक चीज है कि नया कानून है पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है, दूसरी चीज है कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर को मना है, कॉन्ट्रैक्टर को इसका बीच में लाने का इस कानून बिल्कुल बैन करती है, तो इसमें कोई ऐसा किसी का भी कोई परसेंटेज लेना या ऐसा करप्शन करेगा तो भी करप्शन करने का बहुत सारे चांस है इसके अंदर, मगर जो सामूहिक अंगेक्षण का एक प्रावधान इस कानून के अंदर है इसकी वजह से वो पकड़ती है। तो लोगों को जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लागू कराने का किसकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को इसकी ऊपर इतना ज्यादा जो रुचि नहीं होती है, ये भी एक कारण है। और फिर मैं ये भी बताना चाहती हूँ जो कानून के तहत करने का काम तय किया है वो सेंटर से तय किया है, वो काम एक लिस्ट दिया 8 या 10 कामों का लिस्ट दिया है, वो काम कितना हर एक ब्लॉक में या जिला में लागू कर सकती है, वो उस काम को हम ले सकती है, ये भी एक प्रश्न होती है। इसलिए मेरे ख्याल से हम थोड़ा राज्यों को भी थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए, उन राज्यों में कौन सा काम इसके अलावा जो लिस्ट आउट किया है इसके अलावा और कौन सी काम कर सकते करके उनका भी थोड़ा फ्रीडम हमें देने का जरूरत है।
नरेगा को लागू होने से इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा है, खासकर महिलाओं की स्थिति में, गाँव में जो महिलाएं रह रही थी उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा?
देखो मेरी संगठन भारतीय महिला फेडरेशन NFIW 2008 में जो केंद्र की रूरल मिनिस्ट्री के साथ मिलके एक स्टडी किया था सामूहिक और आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की इस कानून आने के बाद, हमने 4 राज्य लिया था, उसमें हम लगभग 1000 से ऊपर हम महिला से मिले थे और उनसे पर्सनल बातचीत किया है। तब हमें सभी ने पहली बात है बोले बहुत अच्छी कानून है, हमारे लिए बहुत अच्छी कानून है, मगर ये मैंने ये भी बोले कि जो 100 दिन मिलने का बात और जो किया हुआ काम का जो भुगतान कम से कम 15 दिन के अंदर मिलने के बाद, ये दोनों काम ठीक से होगा तो फिर ये 100% सक्सेसफुल होगा। मगर वो अभी नहीं हो रहे, फिर भी महिला को जो कुछ महिला हमें बोल रही, एक महिला हमें ये बताया, हमने पूछा उनसे आपको इसमें क्या फायदा हो गया और आप इसको आपकी निजी जिंदगी में क्या उन्नति हुआ है, तब उन्होंने बोल रहे जो इस कानून आने के बाद मेरी जिंदगी में पहली बार, मेरी पोती को अभी 11 साल का हो गया है, पहली बार मैंने उनका जन्मदिन में एक ड्रेस खरीद के दे दिया है, वो भी पैसा तुरंत देके। तो वो महिला इतना अपना जो एक खुश था और उनकी खुशी हम जो हमें नाप नहीं कर पाती है, मगर उनकी जो अपना अनुभव ये बहुत बड़ा एक चीज होती है। और दूसरा है कि महिला अभी जो इस काम की वजह से कुछ आमदनी आ रही है, इसलिए वो 10 रुपया बचाने के लिए जो बचत समूह में वो भाग ले रहे, मेंबर बन रहे, और ऐसा से छोटा चीज, वो लोग शायद बहुत बड़ा मकान नहीं बना पाती या गहने खरीद नहीं पाती, मगर इन लोगों के लिए जिस हमारे देश के जो आम गरीब लोग होते हैं, उन लोगों के लिए आधा किलो टमाटर भी ज्यादा खरीदना या 1 रुपया बचा कर रखना, ये सब उनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है इस कानून के तहत काम करने से।
नरेगा में जहाँ पर महिलाओं की भूमिका कम है, वहाँ पर इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
देखिए, पहली बात है कि ये 100 दिन हम सुनिश्चित करें, और दूसरी बात इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है, यदि वो 10 दिन भी काम करे, उसकी किया हुआ काम का भुगतान 1 हफ्ते के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर होना चाहिए। और तीसरी बात है जो उनकी बच्चों को देखने के लिए जो सुविधा जो कार्यस्थल पे होना चाहिए, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना ही करना है। आप एक राज्य में हम गया तब बोला इस पूरी देश के अंदर हमारी राज्य में सबसे अच्छा आंगनवाड़ी चल रही, इसलिए कार्यस्थल पे कोई क्रच फैसिलिटी हम नहीं करेगी। तब हमने इन लोगों को बोला था, इनका जो काम शुरू होने का टाइमिंग के बारे में बताया, तब उन राज्य की सरकार को वो बात समझ में आ गया, तो उन्होंने मान लिया था हम शुरू करेंगे। ऐसा ये करना, और बच्चों को थोड़ा खाना भी उधर देने का बात होना, और उनका कुछ भी हो एक सही तरीके से पाल पोषण उधर कार्यस्थल पे होना, वो हो जाएगी तो महिलाओं की भागीदारी भी बहुत बढ़ेगी। और दूसरा है कि जो माइनॉरिटी महिला होती, यूपी में खास करके कुछ जगह पे हम गए थे, उधर वो महिला कभी बाहर जाके काम किया नहीं है, तो हमें अभी और भी सोचने का बात है। तो ये इन बहुत गरीब अवस्था में रह रहे, मगर वो उन लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए और क्या काम हम इसमें इस कानून के अंदर लाके इन महिला को भी इसका फायदा उठाने का और इसका फल उठाने का एक मौका हम देने के लिए बात के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।
आपने कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज से बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते इसी समय इसी स्टेशन पर आपसे फिर करेंगे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे मोनिशा
और मुझे तेज प्रकाश को इजाजत। नमस्कार।